आइए हम आपको जन्मन जाने का रास्ता बताते हैं। जर्मन जाने का कैसा, अब हम आपको जर्मन लिए चलते हैं कि हाउ टू विजिट जर्मन।
तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जर्मनी जाना पसंद करते हैं।
ख़वातीन हज़रात, स्पेशली स्टूडेंट्स, अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी हुज़ैफ़ा अज़मी ने ये बात बतलाई कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जर्मन एजुकेशन डिपार्टमेंट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूं एडवोकेट असलम परवेज़। हम जर्मन जाने का जायज़ कानूनी रास्ता इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वीज़ा कैसे लिया जाए। आज हम हुज़ैफ़ा से ये बात करेंगे हाउ टू गेट वीज़ा, कैसे स्टूडेंट वीज़ा हासिल किया जाए। पहली बात जो पहली किस्त में आपने सुन ली होगी ख़वातीन हज़रात कि वहाँ जाने का कोई ख़ास पैसे वैसे ख़र्च नहीं होते, चंद लाख जो आपके अपने पड़ोसी से लेकर के आप जा सकते हैं जर्मन, और वहाँ जाने के बाद वहाँ क्या जॉब भी कर सकते हैं, आप चाहे कमेंट कर सकते हैं। वैसे हुज़ैफ़ा के तीसरे किस्त के ऊपर आप ये सुन लेंगे कि वहाँ जाने के बाद क्या उनसे बेगार का काम लिया जाता है या बेकार का काम लिया जाता है या पैसे के एवज़ काम लिया जाता है। आइए तो कैसे वीज़ा गेट किया जाता है इसके ऊपर ज़रा सा आप नाज़रीन से शेयर करें।
अच्छा जी, जैसे कि हमारी पिछले पार्ट के अंदर हमने जर्मन जाने की वजूहात के बारे में डिस्कशन किया था, तो जर्मन के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं वन बाय वन कवर करूँगा। सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप अपनी बैचलर्स की डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट तक के बैचलर्स, जिसको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, उस तक के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और अगर आप जो है मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके बैचलर्स तक के, जिसको हम डिग्री कहते हैं, उस तक के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। इसके अलावा जर्मनी जाने के लिए आपके पास आइल्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, और मिनिमम लेवल जो आइल्स का आपको चाहिए वो चाहिए 6.5। 6 के ऊपर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके सामने होंगे वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। इसके बाद जो आपको एक चीज़ चाहिए वो आपका है एक्सपीरियंस लेटर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो उससे आपकी जो है एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ ये कि आपके पास, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि जर्मन लैंग्वेज हो। जर्मनी के अंदर एक जो इशू सारे स्टूडेंट्स को फेस होता है वो है लैंग्वेज बैरियर। जर्मन इट्सेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, और वहाँ पे आपको लोग इंग्लिश बोलते हुए नहीं मिलेंगे। अगर वो इंग्लिश उनको आती भी है तो वो उसके अंदर बात करना प्रेफर नहीं करते, तो जर्मन लैंग्वेज का भी होना एक बेहतर है। तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट रेडी करना है, उसके बाद अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हासिल करना है, जो कि आइल्स सबसे ईजी है, या आप टॉफिल कर सकते हैं, लेकिन आइल्स प्रेफरेबल है बिकॉज आइल्स जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद आपको अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, अगर आपके पास जॉब है तो वेल एंड गुड, आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर हासिल करना है, और पांचवा जो चीज़ है वो ऑप्शनल है, आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपके पास मज़ीद ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। जब आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी कर ली, अपना पासपोर्ट बना लिया, अपने आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया, फिर आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है, और उस सीवी के अंदर आपके जो तमाम एजुकेशनल डिटेल्स हैं, जिस तरीके से हम एक प्रोफेशनल सीवी बनाते हैं उसी तरीके से एक एजुकेशनल सीवी बनेगी। पैटर्न बिल्कुल वही होता है, लेकिन इस मरतबा वो सीवी के अंदर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिल करते हैं। आपने एक सीवी बना ली, उसके बाद तीसरा मरहला आपके एडमिशन का स्टार्ट होता है, वो ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करनी है। यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करने के लिए एक वेबसाइट,
यानी कोई यूनिवर्सिटी तलाश करनी है, किस यूनिवर्सिटी में आपने दाखला लेना है,
बिल्कुल
थ्रू हाउ टू गेट यूनिवर्सिटी,
तो उसके लिए एक जर्मनी की वेबसाइट है dart.de, ये वेबसाइट जर्मन गवर्नमेंट वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको जर्मनी की तमाम पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, और उसके अंदर बहुत सारे फ़िल्टर्स और ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप डाल सकते हैं, और उसके ऊपर डालने के बाद आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी लिस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि आप अपनी डार्ट की वेबसाइट को खोलें, अपने क्रेडेंशियल्स डालें, अपने फिल्टर सेट करें, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिस्ट में को इंडिविजुअली हर कोर्स जो कि आपको अच्छा लगता है उसको ओपन करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी चेक करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी लगती हैं कि ठीक है आप उसके ऊपर को फुलफिल करते हैं, तो आप एक एक्सेल की लिस्ट बना लें। अब आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट होने का मरहला हो गया, अब प्रोसेस स्टार्ट होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से अप्लाई किया जाए और किस तरीके से एडमिशन सिक्योर किया जाए। जर्मनी में एडमिशन्स दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है थर्ड पार्टी एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, आप उसके ऊपर अपनी, जैसे हम फेसबुक वगैरह और कहीं भी अपनी आईडी बनाते हैं, वैसे आप एक आईडी बनाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ जो डायरेक्ट एडमिशन ले रही होती है उनकी कोई फ़ी नहीं होती, लेकिन अगर कोई फ़ीस है तो वो बहुत मिनिमल होती है, 30 और 240 यूरो होती है। आप उसको पे करते हैं और पोर्टल के ऊपर ही आप अपना सारा काम करते हैं।
ये जो पैसे पे करते हैं ये इसका क्या है, कोई वहाँ कोई बैंक कोई अकाउंट?
अच्छा, यूजुअली 95% केसेस में ऐसा होता है कि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए कोई पैसे नहीं पे करने होते, लेकिन अगर आपको पैसे पे करने भी पड़ते हैं तो यूनिवर्सिटी की अपना एक अकाउंट डिटेल देती है, आप वो अकाउंट डिटेल के ऊपर पेमेंट करते हैं एंड देन उस पेमेंट की रिसिप्ट आपको पोर्टल पर अपलोड करनी होती है। ये तो था डायरेक्ट मैथड। थर्ड एक होता है थर्ड पार्टी मेथड, जो कि हम कहते हैं वाया यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट एक थर्ड पार्टी है जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, यानी वो एज अ मीडियोकर काम करती है आपकी और जर्मन यूनिवर्सिटी के दरमियान। यूनिवर्सिटी बोलती है, लेट्स से कि एक यूनिवर्सिटी है ए, आप उसके अंदर एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो यूनिवर्सिटी ए है उसके पास हज़ारों बच्चे के एडमिशन्स आ रहे हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हज़ारों बच्चों के एडमिशन्स को जो है के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, तो वो दो ऑप्शंस देती है आपको। वो देती है कि भाई तुम जाओ यूनिअसिस के पास जो कि मेरा मीडियोकर है, तुम यूनिअसिस के पास जाओ, यूनिअसिस की फीस पे करो, यूनिअसिस को अपने डॉक्यूमेंट्स दो, फिर हम जाने और यूनिअसिस जाने। इसको कहते हैं एडमिशन वाया यूनिअसिस। इसके अंदर यूनिअसिस के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, यूनिअसिस की फीस पे करते हैं और फिर यूनिअसिस्ट आगे यूनिवर्सिटी से डील करती है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, और फिर अगर आपके पास एडमिशन हो जाता है तो आपको जो है आपका एडमिशन लेटर या रिजेक्शन लेटर वाया ईमेल रिसीव हो जाता है। ये एक तरीका है यूनिअसिस्ट से एडमिशन सिक्योर करने का। दूसरा तरीका ये हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि ठीक है हम एडमिशन प्रोसीजर जो है वो हमारे पोर्टल पर होगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स हमारे पोर्टल पर अपलोड करने हैं, लेकिन आप यूनिअसिस्ट से हमें एक डॉक्यूमेंट लाके दें जिसको कहते हैं VPD, यानी प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, कि यूनिअसिस्ट ने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं और उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आप एलिजिबल हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें। इसको हम कहते हैं VPD। तो कुछ यूनिवर्सिटी ये कहती हैं कि आप यूनिअसिस्ट से VPD लेकर आएं, उस VPD को हमारे पोर्टल पर अपलोड करें एंड देन उसके बाद हम अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देंगे। तो ये प्रोसेस है, यानी या तो डायरेक्ट पोर्टल पे होगा या वाया यूनिअसिस्ट होगा या फिर यूनिअसिस्ट और पोर्टल का इन बिटवीन हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी VPD यूनिअसिस्ट से मिलेगी और VPD अपलोड होगी पोर्टल के ऊपर। इस प्रोसेस के थ्रू जब आप गुजर जाते हैं देन फिर आप देखते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। अब जब एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो अब मजीद फेस है, अब फेस स्टार्ट होता है वीज़ा का। जब तक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है आपका वीज़ा का फेस स्टार्ट नहीं हुआ। आपने ना ही ब्लॉक अकाउंट करवाना है ना ही वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करना है, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका कब एक्सेप्टेंस आती है कि नहीं आती, या आपको एक्सेप्टेंस आती भी है तो कब तक आती है। जब आपके हाथ में एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आपने दो काम करने होते हैं, आपने एक ब्लॉक अकाउंट करना होता है। ब्लॉक अकाउंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुरिकल है, फिनटिबा है, और भी मौजूद है, लेकिन फिनटिबा इज़ कंपेरेटिवली ईजियर देन अदर्स, तो फिनटिबा आप कर सकते हैं या आप कोई और भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपने जर्मन ब्लॉक अकाउंट किया और उसके अंदर पैसे डिपॉजिट कर दिए, अब आपने जो है अपॉइंटमेंट ढूंढना है। अगर आप सिंध या बलूचिस्तान के अंदर हैं तो आपको डील करेगा कराची कौंसुलेट। कराची कौंसुलेट में डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे अपॉइंटमेंट्स आ रहे होते हैं, आप मंडे टू फ्राइडे किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर अपॉइंटमेंट अवेलेबल होता है, आप उस टाइम पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है, 2-3 अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होते हैं और उस दिन जिन्होंने भी उन अपॉइंटमेंट को बुक कर लिया उनको मिल जाता है। लेकिन अगर आप पंजाब या KPK के अंदर हैं तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी डील करेगी और आपको इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए को ईमेल भेजनी पड़ती है अपनी डिटेल्स के साथ एंड देन फिर इस्लामाबाद एम्बेसी अपनी मर्जी से आपको अपॉइंटमेंट देती है, जिसके लिए वेटिंग लिस्ट अराउंड 6 मंथ्स है। तो अगर आप सिंध बलूचिस्तान वो केपी के और पंजाब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जहन में 6 मंथ का टाइम पीरियड होना चाहिए एडमिशन लेटर मिलने के बाद अपॉइंटमेंट आने तक के लिए। अच्छा, जब आपके पास अपॉइंटमेंट आ गया तो जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर एक पूरी लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको साथ कैरी करनी होती है। उसके अंदर आपका एडमिशन लेटर होता है, आपकी ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन होती है, आपकी सीवी होती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कुछ डिक्लेरेशंस और एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह होते हैं जो कि आप साथ लेकर जाते हैं। आपका वीज़ा होता है और वीज़ा के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं और आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज्ड होती हैं और मेंटेन्ड होती हैं, फिर जर्मन एम्बेसी अपनी वेरिफिकेशन करवाती है यूनिवर्सिटी में और जिस सिटी में आपको जाना होता है उसका हम कहते हैं आउसलैंडर बी होल्डर। वहाँ पे आप आउसलैंड बी होल्डर में वो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती है, वहाँ से अगर क्लियरेंस आ जाती है तो फिर आपको आपका वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है।
अगर एक कभी ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी ने तो अप्रूव कर दिया लेकिन एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही है?
बिल्कुल, इस किस्म के केसेस सुनने में आते हैं। इस किस्म के केसेस दो वजूहात की वजह से होते हैं। एक पहली वजह तो यह है कि आपने यूनिवर्सिटी से तो जो एडमिशन अवेल कर लिया लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को प्रोवाइड किए उनके अंदर कोई मसला था या यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी कंडीशन लगाई थी एडमिशन लेटर में जो कि आपको पहले फुलफ़िल करनी थी और आपने फुलफ़िल नहीं की। यानी यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम आपको एडमिशन देते हैं लेकिन आपके आइल्स के बैंड 6 है, हमें 6.5 चाहिए, और आप जब एम्बेसी अब वीज़ा लेने के लिए गए तो आपने वही 6 बैंड वाला आइल्स जमा करा दिया, तो एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है इस बुनियाद पे कि आप जो यूनिवर्सिटी की कंडीशन है उसको फुलफ़िल नहीं करते। एक ये वजह। दूसरी वजह यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला था और यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट के मसले को इतना डिटेल में नहीं देखा, यूनिवर्सिटी ने आपका एडमिशन लेटर ग्रांट कर दिया लेकिन जब एम्बेसी ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया तो उसको पता चला कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई झोल झालती, कोई एडिटिंग है, कोई चेंजिंग है, कोई मॉडिफिकेशन है, इसकी वजह से रिजेक्शन हो सकता है। और दूसरा जो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से रिजेक्शन होता है वो ये कि बच्चों के पास एडमिशन लेटर है लेट से अप्रैल का, समर सेमेस्टर का, उनका सेशन स्टार्ट होना है अप्रैल में और वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं मई में, जून में या अप्रैल में इटसेल्फ, तो यूनिवर्सिटी ये कह के भी वीज़ा रिजेक्ट कर देती है अक्सर उबेशतर के आपका सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, यानी आप 1.5-2 महीना डिले हैं या आप 1 महीना डिले हैं, तो अगर आप लेट जाएंगे तो आप सेशन को फुलफिल नहीं कर सकते, आप सेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट नहीं कर सकते, जो कोर्स गुजर गया उसको कवर नहीं कर सकते, तो ये कह के भी यूनिवर्सिटी अपना वीज़ा कभी कभार वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। तो बेहतर यही है कि जब भी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपका सेशन अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है तो आप दिसंबर में या जनवरी में अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लें, और अगर आपका सेशन अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है तो आप मई जून में अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट ले लें।
उससे पहले यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी कितना वक्त आपका लेगा कि कितना अर्से पहले से यूनिवर्सिटी के साथ क्रॉसपोंडेंस किया जाए?
अच्छा, इस मामले में हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइन होती है और हर यूनिवर्सिटी का अपना टाइम पीरियड होता है। यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन अगर समर सेमेस्टर है तो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाती हैं, और अगर विंटर सेमेस्टर है तो वो मार्च से स्टार्ट हो जाती हैं और अप्रैल में जून जुलाई से जाती हैं। अब जो एडमिशन लेटर का मतलब जो डिसीजन मेकिंग है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। यूनिवर्सिटी चाहे तो 5 दिन में डिसीजन मेकिंग कर सकती है, यूनिवर्सिटी चाहे तो 5 महीने में डिसीजन मेकिंग कर सकती है। यूजुअली 1.5 से 2 महीना लगता है यूनिवर्सिटी को डिसीजन लेने में, और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन फेज होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू फेस आता है, उस इंटरव्यू फेस के बाद फिर आपका एडमिशन लेटर आता है। तो अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, तो अगर आप पूरे प्रोसेस को लगाएं तो आपको कम से कम 6 महीना पहले अपने सेशन से प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आप वक्त के ऊपर अपने सेशन को ज्वाइन कर सकें।
ये थे हुज़ैफ़ा, आपको बता रहे थे जर्मन के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर सवाल कीजिएगा हम हुज़ैफ़ा के पास। हुज़ैफ़ा अभी 1 हफ्ते के लिए हैं यहाँ शिकागो में, इंशाल्लाह ताला हम इनसे फैज़ हासिल करते हैं। कोई सवाल हो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, अपना और अपने एजुकेशनल कैरियर का ख्याल रखिए। असलम परवेज़ और हुज़ैफ़ा को इजाज़त दीजिए नेक तमन्नाओं के साथ कि जहाँ रहें कामयाबी के साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।